Om Shanti. Very good evening. After a meditation session, we hope कि आपने meditation session का आनंद भी लिया होगा और अनुभूति भी की होगी. तो अभी हम next session start करने जा रहे हैं. Schedule के हिसाब से आपने देखा होगा. It is a technical session जिसमें हम कुछ research paper की presentations देखेंगे, जो एक्चुअल रिसर्च वर्क स्पिरिचुअलिटी में सभी ने किया है. सो मे आई कॉल अपॉन स्टेज डॉक्टर कनिष्क शर्मा, बीके एकता दीदी, डॉक्टर एमजी रमेश बाबू, प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश चंद्रा, डॉक्टर दीप्ति जोशी, डॉक्टर शिखा विश्वकर्मा, मिस मनीषा बाडेतिया, प्लीज कम टू द स्टेज, मिसेज रेणुका जाखर, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर मुकेश शाह एंड डॉक्टर पीयूष रंजन. You are invited at the stage. Please come to the stage. So let's start this paper presentation session. I hope everybody is on the stage. So I'll call Dr. Kanishk Sharma first. Okay, before that, I'm really sorry. Before that, I'll invite the sisters to felicitate them with the badge and flowers. Ek baar zor se clapping ho jaye. Thank you so much. So is shrinkla mein sabse pehle main Dr. Kanishk Sharma ko invite kar rahi hoon. Dr. Kanishk Sharma is an assistant professor and founding faculty, Human Augmentation Lab. Dr. Kanishk Sharma, thank you so much, is an assistant professor and founding faculty, Human Augmentation Lab, Rishi Hood University, Sonipat, Haryana. He is going to present his topic.
Om Shanti. So the paper which I am presenting, it is already published in the journal of in the journal named as Mindfulness. So the title is High Theta Low Alpha Modulation of Brain Electrical Activity During Eyes Open Brahma Kumari's Raja Yoga Meditation. And I'll just give you a brief about this study, that we have collected this data in 2018-2019, and it was an EEG data, and this study just a second. Sorry for the trouble. Anybody? शायद छोटे स्क्रीन से काम चलाना पड़ेगा. No worries. तो I'll just give you a brief about this paper. What is the idea behind this paper? So we have recorded this data from long-term Raja Yoga meditators, especially those people who came from different parts of the globe. Whether few people were from USA, few people were from Australia. So there is a season in Gyan Sarovar which we call it double foreigner season. Basically there the people who are following BK philosophy, Brahma Kumari's philosophy, practicing Raj Yoga and living outside India. Those people used to come at during this period of time, and we have recorded few of those people, and I'll show you in the methodology how many people we have collected the data. So it's basically we have collected the EEG data and wanted to analyze what happens during one of the stage, which is the precursor stage of Brahma Kumari's Raj Yoga meditation, which we call as seed stage, Bij Roop Stati. So Bij Roop Stati mein meditation jab hum karte hain to us duration mein kya changes hote hain brain mein, usko humne analyze kiya, usko humne comparative analysis kiya उन्हीं सब्जेक्ट्स के स्टेट से जिस समय पे वो मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं, जिसको हम बेसलाइन स्टेट बोल सकते हैं. तो मेथड्स जो हमने यूज करे, हमने लगभग 85 मेडिटेटर्स का डेटा रिकॉर्ड किया, जिसमें से 52 मेडिटेटर्स का डेटा हमने यूटिलाइज किया, जिसमें नॉइज और आर्टिफैक्ट रिमूवल करने के बाद, क्योंकि ईजी डेटा एक बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उस डेटा को ट्रिम करने के बाद उसमें से नॉइज फिल्ट्रेशन करने के बाद 52 डेटा को हम यूटिलाइज कर पाए, जिनका मीन एज लगभग 42 वर्ष प्लस माइनस 10 ईयर्स. तो ये मीन एज था, और एज रेंज जो था उन भाई बहनों का, दैट वाज 25 to 59 ईयर्स. मीन मेडिटेशन एक्सपीरियंस उनका जो था वो मिनिमम 17.5 ईयर्स, सॉरी मीन वाज 17.5 ईयर्स प्लस माइनस 10.8, और इसका जो रेंज था दैट वाज अराउंड 4 to 43. 14 फीमेल्स थी, बाकी सारे मेल थे, and they were recruited from Gyan Sarovar only. We have recorded most of the data in Gyan Sarovar, and during the winter season from October to March. 64 channel EEG data we recorded, and then we used one tool which is called e-Loretta. So that is basically a good tool for source localization. जैसे आप लोग अगर जानते हो कि MRI में हम data record करते हैं, और fMRI के through हम उस data को process करके देखते हैं कि brain के कौन से regions हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं और एक्टिवेट होते हैं. सिमिलर तरह से हम ईजी डेटा में भी इस तरह से फाइंडिंग्स देख सकते हैं, और उस टूल का नाम है ई लोरेटा. जो प्रोटोकॉल हमने यूज किया वो 5 मिनट आईज ओपन, उसके बाद 5 मिनट आईज क्लोज बेसलाइन डेटा लेने के लिए, फिर सीड स्टेज बीज रूप सतह के अभ्यास के लिए लगभग 30 मिनट का अभ्यास था, और 5 मिनट फिर आईज क्लोज और आईज ओपन रहा. इसको हमने जब जिस एस लोरेटा ई लोरेटा टूल के द्वारा हेल्प, तो ई लोरेटा बेसिकली क्या करता है, ये जो डेटा हम यहां से रिकॉर्ड करते हैं 64 चैनल का, वो डेटा को इन्वर्स प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करता है, और वो उस जो करंट डेंसिटी है, जो जिस जिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम ब्रेन के सरफेस से रिकॉर्ड करते हैं, उनका सोर्स जानने की कोशिश करता है मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा. तो जब हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करके उसका सोर्स जानने की कोशिश करी, तो हमने कुछ इस तरह से रिजल्ट्स देखे. जैसे आप देख पा रहे हैं राइट में ब्रेन के रीजन से अलग अलग, चलिए कोई नहीं मैं संक्षेप में इसको समझाता हूं. जब हम तो जो रिजल्ट्स हमने देखे, उसको देखने के लिए हमने ब्रेन का एक पार्सिलेशन स्कीम, जिसको हम ब्रॉडमैन एरिया क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. ब्रॉडमैन एरिया क्लासिफिकेशन ब्रेन के जो अलग अलग रीजन हैं उनका ब्रॉडमैन एरिया के एक नंबर से दर्शाया गया है. ऐसे करके बहुत सारे ब्रॉडमैन एरियाज हैं, और उन ब्रॉडमैन एरियाज को हम लगभग 37 ब्रॉडमैन एरियाज को हम फंक्शनली क्लासिफाई कर पाए इन द प्रीवियस रिसर्च, जो पिछले लगभग 70-80 वर्षों में जो रिसर्च हुई उसके बेसिस पे हमने ब्रॉडमैन एरियाज के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं उसको हमने क्लासिफाई करके देखा. तो हमने देख पाए कि जो ब्रॉडमैन एरियाज है उसमें कई सारे ब्रॉडमैन एरियाज एक्टिवेट पाएगा, और स्पेशली जो सीड स्टेज मेडिटेशन था उसमें 3 अलग अलग नेटवर्क एक्टिवेट का है. जब मैं बोलता हूं नेटवर्क, दैट मींस ब्रेन के बहुत सारे रीजन एक साथ एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं, दैट मींस वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनी में काम करते हैं. तो जब एक से ज्यादा रीजन एक साथ काम करते हैं या एक्टिवेट होते हैं, तो उसको हम ब्रेन नेटवर्क्स बोलते हैं आम भाषा में, और न्यूरो साइंटिफिक लैंग्वेज में भी. तो ऐसे 3 टास्क नेटवर्क्स हमको मिले, ऐसे 3 नेटवर्क्स हमको मिले. पहला था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क. दूसरा था टास्क पॉजिटिव नेटवर्क. जब कोई भी आप टास्क करते हैं, आप किसी भी तरह का मोटर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहे हैं, तो उस टास्क करते समय ब्रेन में जो रीजन एक्टिवेट होते हैं एक साथ, उसको टास्क पॉजिटिव नेटवर्क बोलते हैं. तीसरा जो है वो टास्क नेगेटिव नेटवर्क. टास्क नेगेटिव नेटवर्क में हम क्या करते हैं, टास्क नेगेटिव नेटवर्क में हम क्या करते हैं, टास्क नेगेटिव नेटवर्क में हम देखते हैं कि जो जिस समय हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, केवल आंख बंद कर कर बैठे होते हैं, उस समय पे बहुत सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट होते हैं जिनको हम टास्क नेगेटिव नेटवर्क्स बोलते हैं। यानी कि जब कोई टास्क नहीं करते उस समय पे जो एक्टिवेशन होता है वो टास्क नेगेटिव नेटवर्क। इसका मतलब हमारा ब्रेन हमेशा कहीं ना कहीं सारे कुछ ना कोई रीजन है जो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, तो ब्रेन हमारा हर समय एक्टिवेट रहता है। तो हमने देखा ये तीनों एक्टिवेशन, तीनों नेटवर्क जो थे हमारे राजयोग मेडिटेटर्स में एक्टिवेट पाए गए। और एक बहुत विचित्र सी संभावना, इसको हम कह सकते हैं कि राजयोग मेडिटेटर्स जिस समय ध्यान कर रहे होते हैं उस समय पे, और जिस समय ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, बैठ के ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, शायद उनकी स्थिति लगभग किसी न किसी एक स्तर पर समान रहती है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे फाइंडिंग्स थे जिसको हमने देखा। मैं कंक्लूड करूंगा इसको। जो हमने देखा कि ये जो नेटवर्क जो मैं आपको अभी नाम बताया कि टास्क पॉजिटिव, टास्क नेगेटिव और इस तरह के जो नेटवर्क थे उनको जब हमने देखा, तो उन नेटवर्क्स का फाइंडिंग क्या था, वो अगर वो एक्टिवेट हो रहे तो उससे हो क्या रहा है फाइनली। तो उससे हो ये रहा कि वो जो नेटवर्क है वो दे इनिबिट मूवमेंट, फॉस्टर एंड मॉड्यूलेट अटेंशन टू स्टे ऑन द टास्क ऑफ मूविंग थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। तो इसका एक पर्पज ये भी था कि जो राजयोग की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, उनको उनके इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिग्नेचर्स को परिभाषित करना, ताकि ऐसे इन स्टेज को हम एक वैलिडेट कर पाए कि इस स्टेज में ब्रेन में किस तरह से चेंजेस होते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह के मेडिटेशन का अभ्यास करता है तो उनके ब्रेन के चेंजेस को हम देख के पता लगा पाए कि कौन सी स्थिति में है। दूसरा जो हमारे फाइनल फाइंडिंग्स थी उसमें हमने देखा ये जो नेटवर्क्स थे इन्वॉल्व थे, जो ब्रेन एरियाज थे इन्वॉल्व थे, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे अटेंशन मॉड्यूलेशन, अटेंशन को मॉड्यूलेट करना, किस जगह पर ज्यादा यूज करना है, कब आपको फोकस करना है, कब डिफोकस करना है, कब अपना फोकस ज्यादा रखना है, कम रखना है। सेल्फ रिलेटेड प्रोसेसिंग, अपने स्वयं के बारे में चिंतन करना, स्वयं के ऊपर विचार करना, इस तरह के जो ब्रेन एरियाज थे वो भी एक्टिवेट थे। विजुअल इमेजरी, क्योंकि जिस समय हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते समय एक अवस्था ऐसी आती है जिस समय पे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं, उस समय पे हम टाइम ट्रैवल करते हैं। ऐसा कई भाई बहनों ने अपने जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बोला, तो मैं ऐसा इससे हमने कोरिलेट करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि ये कुछ रीजन जो इसमें एक्टिवेट है वो विजुअल इमेजरी से भी एक्टिवेट हो रहे हैं। जिस समय आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे चिंतन चल रहे होते हैं कि आप एक पिक्चर को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी वो कुछ ब्रेन एरिया से जो एक्टिवेट थे। और कुछ लास्ट एरिया जो कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एक्सपीरियंस, इस शब्द को अगर मैं परिभाषित करूं तो अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टडीज आए हैं जिसमें हम नियर डेथ एक्सपीरियंस या फिर आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस को हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ऐसे जब भी जिन भी व्यक्तियों के पास ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो उनके ब्रेन स्कैन जब किए गए, वेदर एफएमआरए के द्वारा या ईईजी के द्वारा, तो भी इस तरह के ये जो रीजन्स थे वो एक्टिवेट पाए गए। तो ओवरऑल फाइंडिंग्स हमारे रिसर्च का एक लेवल पर ये रहा कि इनके सिग्नेचर को हमने परिभाषित किया इतने लगभग 52 मेडिटेटर्स में, और इस सिग्नेचर को लेके इसके अलावा और भी स्थितियों को परिभाषित करने की आगे आने वाले समय में हम चेष्टा करेंगे, ताकि अलग अलग स्टेजेस को हम परिभाषित कर पाएं। धन्यवाद।
थैंक यू डॉक्टर कनिष्क। वी विल कीप क्वेश्चन आंसर सेशंस एट द लास्ट, सो पहले हम सारे प्रेजेंटेशंस सबके सुन लेते हैं, एंड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन वी कैन टेक दोज। सो इस श्रृंखला में नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूं बीके एकता दीदी। शी इज अ कोर ग्रुप मेंबर ऑफ स्पार्क दिल्ली एंड शी इज गोइंग टू प्रेजेंट।
ओम शांति। ये जो स्टडी है इसको जो प्रपोज किया वो है डॉक्टर मनिंदर जी, जो कि यूएस में है और एक 16 इयर्स का स्टूडेंट था जिसको बहुत इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ब्रह्मा कुमारीज में अपना कंट्रीब्यूट करूं, और उसको एक थॉट आया कि क्या जो हम वेदों शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अमृत वेला जिस जो टाइम बताया है उस समय मेडिटेशन करने से हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं, इसलिए उसे अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उसको डॉक्टर मनिंदर भाई ने शेप दिया इस प्रपोजल को, और उन्होंने यूएस से भारत में आकर इस स्टडी को कंडक्ट किया। ये एक ट्रायल स्टेज थी कि क्या राजयोगा मेडिटेशन का इम्पैक्ट हमारी सर्कैडियन इस पर जाता है। तो सर्कैडियन जो हमारा है, उसका मतलब हमारा जो बॉडी का 24 आवर्स का बायोलॉजिकल क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक, उसके ऊपर हमारा फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। तो इन इम्पैक्ट्स को हमारे रिलैक्सेशन से, हमारे स्ट्रेसर से, सब चीजों का इफेक्ट होता है। तो क्या राजयोगा भी इसमें कुछ इफेक्ट दे सकता है? और उसका हाइपोथेसिस यही था कि क्या अमृत वेला का समय यदि हम राजयोग मेडिटेशन करें तो उससे हमारी सर्कैडियन रिदम्स में कुछ इफेक्ट आएगा। तो इस मेडिटेशन को हमारा जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, मानेसर में, वहां पे किया गया। वहां पर हमारे जो 30 ब्रदर्स को इसके लिए सेलेक्ट किया गया, जो मोर देन 10 ईयर से इस राजयोगा की प्रैक्टिस कर रहे थे। और एवरी डे, मतलब वन डे 10 ब्रदर्स, नेक्स्ट डे 10 ब्रदर्स एंड थर्ड डे अनदर 10 ब्रदर्स, ऐसे 3 ग्रुप्स फॉर्म किए गए थे। और वो जो 10 ब्रदर्स थे उनका 3 टाइम पर इसमें मेडिटेशन का डाटा लिया गया। फर्स्ट डाटा 4 AM जब उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया था उस समय लिया गया। GSR एक इक्विपमेंट है जिसमें आपके स्किन को सेंस करता है और आपके इमोशनल स्टेट को बताता है। ये डाटा जो है इसका सैम्पलिंग किया था 1042 Hz पे, 1024 Hz पे इसकी सैम्पलिंग ली गई थी। तो पहले 4 AM पे प्री डाटा लिया गया, फिर 4:45 तक जब मेडिटेशन ओवर हुआ उसके बाद फिर उनका डाटा लिया गया और 2 मिनट्स तक का डाटा उनका रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद में 11 AM पे एक प्री डाटा लिया गया और एक 11:45 पे, और फिर जो आप देख रहे हैं इवनिंग मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो 6 PM पे एक डाटा लिया गया और उसके बाद में एक डाटा लिया गया 6:45 PM पे। तो इन 3 डाटास को कंपैरिजन किया गया। तो आप देख रहे हैं कि अमृत वेला के टाइम पे सबसे ज्यादा GSR की वैल्यू ऑब्टेन हुई, और बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आप देख सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका, और उसके बाद जो 11 to 11:45 वाला है वो बिलो द लाइन है, और 6 to 6:45 वाला है वो अबव, स्लाइटली अबव फ्रॉम द लाइन है। तो ये देखा गया कि अमृत वेला के टाइम जो मेडिटेशन स्टेट था उसके बाद में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन और कामनेस उनके इमोशनल स्टेट में पाई गई, जबकि 11 to 11:45 का जो समय था वो एक अराउजल की स्टेट थी, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अलर्ट होता है और अपने डेली रूटीन में व्यस्त होता है, तो शायद उसकी कामनेस और रिलैक्सेशन इतनी मेडिटेशन के बाद भी इफेक्ट नहीं करती है। और ये जो आप एक बार ग्राफ देख रहे हैं इसके अंदर आप जो ब्लू डॉट्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं प्री स्टेज को, और रेड डॉट्स डिनोट कर रहे हैं आपकी पोस्ट स्टेज को। तो ये डिफरेंसेस इसमें देखे गए। तो यस, राजयोगा मेडिटेशन हमारी सर्कैडियन रिदम्स को इम्पैक्ट करता है, एंड अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट। इसलिए आप सब यहाँ आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि जितना भी दिन आप यहाँ और हैं, आपका जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसको आप वेस्ट ना करें, और उस समय आप इन सब की प्राप्ति करें, अपने आप को उस शांति की शक्ति से भरपूर कर लें जो आपको पूरा दिन चलने में सहायक बने। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू सिस्टर एकता। I'll call Dr. M.G. Ramesh Babu for next presentation. Dr. Ramesh Babu, he is a PhD assistant professor, Department of Physiology, Mellaka Manipal Medical College, Manipal Academy of Higher Education, Manipal. Please, sir. Dr. Ramesh Babu is going to present on Rajyoga Meditation Practice Enhances Positive Thoughts, Happiness and Alters Gray Matter Volume of Brain Regions. Please, sir.
Om Shanti. So we did this comparative study between non-meditators, Rajyoga meditators and patients with migraine disorders. Now, what's the necessity of this comparative study? Before giving any intervention of meditation to any patient group, we want to see what kind of effect it can create. So this comparative analysis, taking meditators who is already practicing meditation and who is not practicing meditation, and the patients who is having migraine disorders. So when we compare their brain regions, we will come to know what are the difference exist before we are going to give intervention, and in the intervention what we can expect. So this is the reason we did this comparative study. So we all are very familiar with what is migraine disorder. It's a primary neurovascular disorder which is very common in female. Sometimes it may be right side headache, sometimes it may be left side, sometimes both sides there will be headache. So there are many studies have been done and found variations in the structural and functional areas in brain regions. So they mostly compared non-meditators and means normal people and patients with migraine disorders. So in this study we are including meditators and particularly Rajyoga meditators. So there are many studies have been done in effect of meditation, particularly mindfulness studies, and there are certain other studies. They did intervention on migraine patients and they came to know practicing meditation has some beneficial role which will lower physiological and psychological arousal to stress and pain. So recently randomized controlled trial studies have been recommended the effect of meditation based intervention as a treatment for headache and other forms of chronic pain. So practice any form of meditation, at least if you practice at least for 20 minutes, it will give some effect. So the need of the study is, till date there is no comparative studies which is including the meditators, and particularly in Rajyoga meditators, as far as we know there is no comparative study in this way. And we did what is called as voxel based morphometric analysis method we applied, and then we found gray matter volume differences in the brain regions. So the aim of this cross-sectional study was to explore alteration in gray matter volume of particularly the central pain processing regions among non-meditators, Rajyoga meditators and patients with migraine. So this central pain processing region, which I am going to explain now, very important to overcome the emotional aspects of pain. So we selected nearly 108 participants, out of which 40 in Rajyoga meditators and 40 participants in non-meditators and 28 participants in patients with migraine disorders. So there were equal number of male and female in non-meditators and Rajyoga meditators, and there were 7 male and 21 female in migraine disorders. So this will indicate, you will come to know that in female the migraine disorder is very common. Getting male patients with migraine disorders, you have to wait for a longer time. There were 26 episodic and 2 chronic patients with migraine disorders. So what is episodic means? The patient who is having less than 50 times suffering from headache in a month, and the person who is suffering more than 15 times in a month, then we call it as chronic migraine disorder. And the 75% of, in our study, 75% of percent of the participants, migraine participants, in between the age group of 20 to 40 years of age, means they got this migraine disorder in this age group. So I am not going into much technical detail about this. So all participants underwent MRI in the Department of Radio Diagnosis and Imaging, Kasturba Medical College, Manipal. Now, if you look at the result of this study, first we compared total brain volume and then gray matter volume, white matter volume and the cerebrospinal fluid volume. So when comparing the total brain volume, you can find out here there is a significant difference. The gray total brain volume in Raja Yoga meditators is significantly different than other groups. These are the brain regions which involve in central pain processing. That is the medial superior frontal prefrontal cortex, anterior orbital cortex, right precentral, right supramarginal, left postcrural cingulate, and temporal gyri and cerebral crus regions. So this region, what we call the central pain processing region, which is very very important to overcome the emotional aspect of pain. So when comparing the patients with non-meditators, we found a few brain regions which involves in central pain processing. We found increased gray matter volume in few brain regions, and when compared with Raja Yoga meditators and with the patients with migraine, we found in only one brain region, that is the left cerebellar crus, which is very important for emotional processing of the pain. So in conclusion, the significant increase in the gray matter volume in several specific central pain processing region in Raja Yoga meditators and a very few pain processing region in patients with migraine disorder, what is identified in is RM practitioners have integral structural connectivity for better control over pain. This may help Raja Yoga meditation to overcome emotional and cognitive aspect of pain, and a regular practice of meditation may help to alleviate migraine pain. So in future more studies need to be done to identify the usefulness of Raja Yoga meditation as a complementary therapy for migraine. So
thank you Dr. M.G. Ramesh Babu for your insightful presentation. I'll call upon the stage Professor Dr. Brijesh Chandra for the next presentation. Dr. Chandra is former director, Institute of Social Sciences, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. Dr. Chandra is going to present on science and spirituality in a new hybrid social order. Without slide.
So on the outset, Om Shanti. I'm meaning to say that the first thing which came to my mind after receiving the invitation from Mount Abu, that how science, what science can come above the spirituality. So I think that spirituality gave birth to the science. It is not science. Science is maybe yesterday, even today, they were talking of physical sciences, chemistry, any other science. And this specific paper is about the Indian social system, how it is applicable to us, how we can achieve from it, and what we can. So, the new order of society which is coming into existence, I am the only and only person who have brought a hard copy. I do have soft copy in my where I am staying. But Unfortunately or fortunately, we believe in writing. So, what is new hybrid society? The first question comes, the coexistence of science and spirituality. I keep the physical science at one part. I am not taking social sciences or any other science in this sphere at all. I am taking it separately. I am taking physical science and then what they can contribute in spirituality, as some of the papers has been presented over it. But what I feel is that they are limited to a very small group, a testing group. But when we go to 140 million people, और से 140 करोड़ लोगों के पास जब हम पहुंचते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को ये मान लेना, भारतवर्ष कहिए या इंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, उसको ये मान लेना कि वो कोई एक स्वरूप में है. एवरीबडी इज एट द सेम लेवल. मे बी इट इज गुड व्हेन वी आर अमंगस्ट द साइंटिस्ट, मे बी साइंटिस्ट फ्रॉम एनी साइड. But in reality, India exists with those 87% who doesn't have access to this kind of hybrid system. What this hybrid system is going to do, as a sociologist, we hold a very diverse perspective. हम बहुत अलग से इसके बारे में विचार रखते हैं. ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज द पॉसिबिलिटी दे ऑफर, इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द सोशलिस्ट देमसेल्व्स दे डिफर विथ ईच अदर बिकॉज देयर सोशियोलॉजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सोशियोलॉजी विच इज जर्मन शेफ्ट सोशियोलॉजी. आई विल कम टू दैट पॉइंट. वॉट इज दैट? Science asks questions, how? And spirituality very humbly speaks about why. Why not look for the answers? Similarly, our beliefs are very hybrid, meaning to say that we believe the things which doesn't belong to us. That's why all of a sudden, एकाएक हमारी जो भारतीय ज्ञान पद्धति थी उसमें एक रुकावट पैदा हो गई, और उसके बाद हम लोग हाइब्रिड करने लगे उसको, कि हम उसको ऊपर से कहीं से ले लें. देखिए, यह हाइब्रिड शब्द का मतलब मैं आपको बहुत मोटा सा एक बताने चाहता हूं, जरा इसको थोड़ा सा अगर ओवरलैप कर जाए टाइम तो मुझे आप लोग एक दो मिनट क्षमा करेंगे. देखिए, हम लोग हाइब्रिड का मतलब एक बात से लगाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अपनी सोशल लाइफ में, अपने भारतीय जीवन पद्धति में अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे यहां 40 करोड़ लोग अभी तक अपना पेट भरने के लिए कमा भी नहीं पाते. इसी तरीके से अगर हम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें तो हम पाएंगे कि बहुत लंबा एक गैप है एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में और एक मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी में, और एक सोसाइटी जो वास्तव में भारतवर्ष है. मे बी इट इज बाई एक्सीडेंट और इंसिडेंट दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड भारत. असली भारत के अंदर इन सब का कोई बहुत महत्व नहीं, क्योंकि एक सोसाइटी तो वो है जो हमारे माइक्रो लेवल पर है, हमारे सूक्ष्म स्वरूप तक है. एक हमारा समाज है जो बिल्कुल हमारे मैक्रो लेवल तक है, जैसे हम लोग सब बैठे हुए हैं. हम लोग मैक्रो लेवल के लोग हैं, हम लोग माइक्रो लेवल के लोग नहीं हैं. हम में से बहुत कम लोगों ने यह प्रयास किया होगा कि हम लोग जाएं और हम उस समाज के वर्ग से पूछें जो डिप्राइव्ड हैं किसी भी प्रकार के हाइब्रिड सिस्टम ऑफ नॉलेज से, मतलब ज्ञान का जो तरीका आ रहा है, टेलीविजन को छोड़ दीजिए, टेलीविजन ज्ञान देता या नहीं देता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज्ञान के जो और स्रोत हैं और सोर्सेज हैं ज्ञान के, वो इतने हाइब्रिड हैं कि वो ना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना उसको समझ सकते हैं। अब उन लोगों के सामने क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी? जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं वो क्या करेंगे? अब आप बताइए, एक बच्चा जो केवल 6 साल 8 साल का है, उसको एकाएक एक ये मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, मोबाइल हाथ पड़ जाए तो वो बच्चा कौन सी चीज को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है या अनजाने में कर जाएगा, और बहुत सी ऐसी नॉलेज जो उसकी आयु में नहीं जानी चाहिए, विच इज नॉट परमिसेबल एंड नॉट अलाउड फॉर दैट स्पेज एज ग्रुप, विल रीच टू हिम एंड देन हिज थिंकिंग विल गेट एब्सोल्युटली करप्टेड। हर आदमी को इस सिस्टम तक पहुंचा देना और पहुंचाने के बाद में उसको फीड करना, और फीड करने में भी ये देखना है। इसी वक्त मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूं। अभी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, यह आई तो 1986 में थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 10 साल तक ये कोल्ड स्टोरेज में रखी गई, और फिर एक एक्टिव गवर्नमेंट आई जिसने ये हिम्मत दिखाई कि वो इसको निकाले और पढ़े और इसको लागू करने की कोशिश करे, और 2020 में पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया कि सारे देश के अंदर शिक्षा एक प्रकार की होगी, शिक्षा पद्धति एक प्रकार की होगी, और हम आखिर के गांव तक ये हाइब्रिड सिस्टम पहुंचा देंगे नॉलेज के लिए। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या 140 करोड़ के देश में जहां अन्न नहीं पहुंचाया जा सकता अंत तक, इस तरह से नॉलेज को पहुंचाया जा सकता है? हम स्कूलों के माध्यम से अगर हम उनको हाइब्रिड भी कर दें तो, आई एम सॉरी इट इज हार्डली ए मिनट लेफ्ट, मैंने इस पर बहुत सी स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत से मेरे कंप्यूटर पे हैं, मेरे शांति कुटीर कहलाता है, नहीं कुटीर जो कुटीर वहां है मेरे पास, कल के पैनल डिस्कशन में मैं इसको आगे ले जाऊंगा, क्योंकि एक मिनट रह गया इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं। देखिए, दो बातों को मुख्य रूप से समझने की है। नंबर एक, साइंस बाद में आया, स्पिरिचुअलिटी पहले आई, स्पिरिचुअलिटी ने ही साइंस को पैदा किया। अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं लेटा होता और वो सेब ना गिरा होता तो ग्रेविटी नहीं आई होती, और आर्किमिडीज अगर अपने बाथटब ना बैठा होता तो फिर वो साइंस नहीं आई होती। तो स्पिरिचुअलिटी गिव बर्थ टू एवरी साइंस। स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट यू आर गोइंग इनसाइड ऑफ यू, नॉट आउटसाइड ऑफ यू, एंड साइंस गोज आउटसाइड ऑफ यू। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है जो दोनों को बहुत अलग करता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की पहुंच हमारे हर सेंटर में, और बल्कि अब तो शायद विदेशों में, यानी कितने देशों तक पहुंच गई है। आप गौर करिए, हम विदेशों से विज्ञान लेते रहे और अब हम ज्ञान उनको देने जा रहे हैं कि तुम विज्ञान तो लाए लेकिन ज्ञान नहीं ला पाए, ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। यही कारण है, यही इसका एक मुख्य कारण है कि हम लोग एकदम बहुत पॉपुलर हुए और इसमें, और आज हम लोग बड़े गर्व के साथ विश्व गुरु की दिशा में चल पड़े, और इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से चंद्रमा के उस भाग पर हमने जाने की रिसर्च की जहां अभी तक जो बहुत सभ्य देश हैं वो पहुंचने की हिमाकत भी नहीं कर पाते। हम पहुंचे और वहां चल के भी दिखाया कि हम ये वहां की तस्वीरें ले सकते हैं। ये सब इसलिए होता है कि जब हम ज्ञान को आखिरी स्तर तक पहुंचा देते हैं, यही कारण है कि हमारे जो साइंटिस्ट वहां बैठे हुए हैं इसरो वगैरह में, वे सभी स्पिरिचुअलिटी से पैदा हुए हैं। वो वाली नॉलेज नहीं, वो नॉलेज तो हमको पढ़ने और लिखने से आ जाती है, ये नॉलेज हमको केवल और केवल एक तरीके से मिल सकती है कि कि हम समाज को ठीक तरह से समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। ज्ञान अपने आप को पहचानना है, ज्ञान कोई विज्ञान नहीं है जो हमारी परिभाषा कर दे, कोई ऐसी साइंस नहीं है जो हमारी परिभाषा कर दे, कोई कर सकता है? मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी अपनी परिभाषा कर सकता है। कल पैनल डिस्कशन में मुलाकात होगी, एक डेढ़ घंटे का सेशन है, तब मैं इसको बहुत ब्रॉडली प्रेजेंट करूंगा। क्वेश्चंस भी उसमें इन्वाइटेड है, आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप उसमें हिस्सेदारी करें और समझें कि वास्तव में भारत के अंदर ज्ञान का भंडार जो है उसे विज्ञान में कैसे बदला जा सकता है, उसको हम एक सिस्टमैटिक ढंग से कैसे ला सकते हैं। वो इतना अनसिस्टमैटिक है, जैसे जैसे वो सिस्टमैटिक होता जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू प्रोफेसर ब्रिजेश चंद्र फॉर नाइसली हाईलाइटिंग द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आई इन्वाइट डॉक्टर दीप्ति जोशी फॉर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। डॉक्टर दीप्ति जोशी, शी इज अ फाउंडर प्रेजिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप IEL। शी इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस पॉसिबिलिटीज विद इन एजुकेशन पॉलिसीज इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया थ्रू केस स्टडीज।
एम आई ऑडिबल? ओके। ओम शांति। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश और मिक्स्ड? बोथ? ओके। सो माई टॉपिक इज, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड माई रिसर्च हैज बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वी टॉक अबाउट भारत। सो माई एक्चुअल टॉपिक इज पॉसिबिलिटीज विद इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इन रिगार्ड्स विद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। अभी मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने NEP पे ऑलरेडी बात करी है, उन्होंने शिक्षा प्रणाली पे ऑलरेडी बात करी है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया थी। आज के जो आधुनिक भारत को हम चाहते हैं कि वो भी सोने की चिड़िया बने। राम राज्य सभी को चाहिए, पर जो स्टडी है, जो रीजन है राम राज्य बनने का, वो रीजन लाने की बात बहुत कम लोग करते हैं, और वो रीजन है समानता। मैं एक प्रश्न सभी से पूछना चाहूंगी कि भारत के स्वातंत्र्य को 76 इयर्स हो गए, इट्स बीन 76 इयर्स पोस्ट आर इंडिपेंडेंस। लगभग 11 प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में हो गए, विच इज 10+ प्राइम मिनिस्टर्स वी हैड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कैन यू टेल मी हाउ मेनी विमेन प्राइम मिनिस्टर्स डिड वी हैव? एक, दैट मीन्स 10%, है ना? और हमारा पॉपुलेशन भारत और अर्थ पे कितना है, विमेन पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, क्लोज टू 50%। हमारा पॉपुलेशन 50% है, पर हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो 10% भी नहीं है। ये जो है वो असमानता है, और समस्या जो है वो असमानता है। भारत से आगे बात करते हैं ग्लोबल, क्योंकि हम बोलते हैं वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर। जैसा हमारा विश्व होगा वैसा हमारा भारत होगा, जैसा हमारा भारत होगा वैसा हमारा भविष्य होगा। तो जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है उसकी बात हम करते हैं ऑलरेडी, जो जिनको हम प्रगत देश मानते हैं, USA का उदाहरण लेते हैं, कहते हैं व्हाट हैपन्स इन अमेरिका टुडे विल हैपन इन द वर्ल्ड टुमारो। तो अमेरिका के स्वातंत्र्य को 100+ ईयर्स हो गए, क्या आप में से कोई बता सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कितनी वुमेन थी? अब तक में अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसमें से महिला कितनी थी? एक भी नहीं, 0%। सो जहां हमारा प्रतिनिधित्व 0-10% है, क्या वो विश्व में शांति समाधान और समतुला पॉसिबल है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या कहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इम्बैलेंस इक्वेशन। हम फिजिक्स देखें, मैथ्स देखें, केमिस्ट्री देखें, ये सभी में क्या होता है, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। इम्बैलेंस इक्वेशन इज अ प्रॉब्लम, इज अ पजल एंड इट इज अ चैलेंज। तो हमारे समाज में टेररिज्म से लेकर के क्लाइमेट चेंज जितनी भी समस्या है, वो समस्या का अगर रूट कॉज हम गौर करेंगे तो इम्बैलेंस है। एक सरल भाषा है कि अगर महिलाओं को हम पूछे कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति या तो बेटे के भरोसे पे अपना घर और बच्चे छोड़ के जाएंगी, अगर सिर्फ पुरुष घर संभालता है तो वो घर की क्या हालत होती है, हमें सभी को पता है, इट्स ईदर अ मेस और अ डिजास्टर. तो इफ वी डोंट लीव आर चिल्ड्रन एंड होम, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो ये रिसर्च है उसका पर्पज ये नहीं है कि मैन आर नॉट केपेबल, जो पर्पज है वो ये है कि इम्बैलेंस इज नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. तो पूरा पूरा घर और बच्चे जो है इनकी जिम्मेदारी अगर हम किसी पुरुष पर नहीं सौंपते हैं तो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी किसी पुरुष पर कैसे सौंप सकते हैं. जब ब्रह्म कुमारी में आते हैं तो सभी तारीफ करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट की कि बहुत अच्छी व्यवस्था है. कारण क्या है कि स्त्रियों का प्रतिनिधित्व उतना ही है जितना पुरुष का है. दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम अच्छा होता है. किसी एक के कंधों पर काम रखा जाए तो वो काम कभी भी अच्छा होता नहीं है. समय कम है पर पॉलिसी की बात करें तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें एक सरल चीज है, हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाना मुद्दा नहीं है क्योंकि 50% वुमेन पॉपुलेशन चाहिए, वरना शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी. तो हमें उस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरना अगर हमें हमारी जरूरत नहीं होती तो आज डायनासोर के जैसे वुमेन भी जो है एक्सटिंक्ट हो जाती. समस्या क्या है, बेटी पढ़ाओ. एक प्रश्न है छोटा सा, कौन बेटी है जो पढ़ना नहीं चाहती और कौन से माँ बाप है जो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते. हर बेटी पढ़ना चाहती है, हर माँ बाप बेटी को पढ़ाना चाहते हैं. तो समस्या कहाँ है जहाँ हम स्लोगन बोलते हैं बेटी पढ़ाओ. समस्या है कि हमारे समाज का स्ट्रक्चर और पॉलिसी है वो बेटी को पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि जो पॉलिसी बनाने वाला समाज है वो पुरुष प्रधान है. यहाँ स्त्री के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है. आप सभी में से कितने लोग हैं जो स्कूल कॉलेज गए हैं या तो जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, एक बार बस हाथ उठा दीजिए. सभी लोग. अब मैं बताती हूँ कि अन्याय हम कितना सहते हैं. 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर बोथ मेन वुमेन गर्ल्स बॉयज. छूट है कोई भी? 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड. महीने के 4 से 6 दिन हमारी जो बेटी है ना वो 12 साल के बाद मासिक धर्म में होती है. शी मेंस्ट्रुएट. साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली शी इज डिफरेंट फ्रॉम अ बॉय चाइल्ड. क्या हमने बेटी को कहा कि बेटी बिना प्रश्न, मतलब बेटी को कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा अगर वो 4 से 6 दिन एक्स्ट्रा घर पे बैठे? क्या हमारी पॉलिसी में ये प्रोविजन है? आप एक रूरल इंडिया की बात करें, क्योंकि ये मुद्दा कभी डिस्कस नहीं होता है. रूरल इंडिया में जहां टॉयलेट है पर वो टॉयलेट में पानी नहीं है, एंड इफ अ गर्ल हु इज 12-13 ईयर्स ओल्ड शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन, विल यू गो टू द स्कूल फॉर 8 आवर्स एंड ट्रेवलिंग 2-3 आवर्स? क्या हम जाएंगे? फिर हम चर्चा करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर हमारा समाज न इस बारे में चर्चा करता है, न हमारी पॉलिसी इस बारे में चर्चा करती है कि जहां पे असमानता है, जिस पॉलिसी में असमानता है, वहां समाज में समानता कैसे आएगी. विद दिस आई एंड माय टॉपिक. ओम शांति.
थैंक यू डॉक्टर दीप्ति फॉर हाईलाइटिंग दिस जेंडर डिफरेंस. एंड actually her talk was very simple and was easy to follow for everyone, I hope. So let me call on the stage Dr. Shikha Vishwakarma for her next presentation. Dr. Shikha is a computer scientist, director, principal, professor. She is going to present on exploring the spiritual evolution of computer science learning and resolutions.
Hello, I'm audible? ओम शांति. आज का सब्जेक्ट जो है दैट इज अ साइंस एंड इंटीग्रेशन. तो शायद कल से जब से हम आए हैं तो सारे साइंस और जो अध्यात्म का इंटीग्रेशन है वो सारे ही बता रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे उससे उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे, बिकॉज मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ. तो जिस प्रकार आज की दुनिया में कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होता है उसके लिए अभी सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्या है, एवरीबडी यू नोज दैट. जो नहीं भी है वो भी समझ सकते हैं कि अभी अगर कंप्यूटर फील्ड में है तो व्हाट विल बी द सबसे बड़ा जो है एक प्रॉब्लम, एक हमारे पास चैलेंज क्या है, दैट इज अ डेटा. जो इतना वास्ट डेटा आ रहा है, जो इतना अनइन्फॉर्मेटिव डेटा आता है, डेटा तो बहुत सारे आते हैं उसको स्टोरिंग करना, उसको स्टोरिंग करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग आया। फिर अब जो है उस जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और अनइन्फॉर्मेटिव डेटा है उसको जो है डिलीट करना, एंड जो इंफॉर्मेटिव डेटा है वो आप तक प्रेजेंट करना, दैट इज अ मेन प्रोस्पेक्टिव इन कंप्यूटर साइंस। जस्ट अब हम इसी चीज को स्पिरिचुअलिटी में जो हमारा है योग में हम इस चीज को जो है कंपेयर करते हैं। जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो ये रहता है कि डेटा आया है, इतना सारा जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो सारा डेटा जो है आपके पास आया एंड आपको डिलीट करना है। सेम लाइक दैट कि हम चीजों को पढ़ते हैं, जब हम रात को बैठते हैं ना, जब इंस्टाग्राम और ये सब लेके जो स्वाइप करते हैं, जैसे ही हमने टिंग किया तो वो डेटा विल इम्पैक्ट इन आवर माइंड। तो जब ये इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड में तो ये डेटा तो आपके माइंड में आ गया। अब ये जो सारी चीज आपके माइंड में आ गई है इसको जो है डिलीट करना, दैट इज अ बिग टास्क। तो बहुत सारे डेटा जो है हम जब टिंग टिंग करते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजें हम देखना नहीं चाहते बट हम देखते हैं उस चीजों को। तो ये जो डेटा जो है हमारे जो माइंड पे आ जाता है दैट इज सम जो काम के डेटा नहीं रहते, अनइन्फॉर्मेटिव डेटा रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में एंड राजयोगों में, अभी हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज अ निगेटिव थॉट्स जो होते हैं। तो ये सारे जो है निगेटिव थॉट्स आपके जो है माइंड पे आते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये आपको कोई ना कोई डिजीज दे दे। तो अब जो है हमारा जो है बेसिक ये है कि हमें इस डिजीज को डिलीट कैसे करना है, ये जो इन्फॉर्मेटिव डेटा है इसको डिलीट कैसे करना है एंड फास्टर कैसे डिलीट करना है। तो डिलीट भी नहीं कहूंगी मैं, कंट्रोल ऑल डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट इज अ नॉट परमानेंटली, कंट्रोल ऑल डिलीट इज अ परमानेंटली डिलीट फ्रॉम आवर माइंड। तो अगर मैं तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं तो मैं सोचती हूं कि जैसे कंप्यूटर साइंस में हम जो है हम क्या सोचते हैं कि कैसे इस चीजों को फास्टर किया जाए। ठीक है हम राजयोग सीख रहे हैं, हम इससे क्या है स्लोली स्लोली जो है हम अपना जो है पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव सोच के, हम जो जितने भी जो बैड डेटा है जो निगेटिव थॉट्स है हमारे, उन थॉट्स को हम जो है डिलीट करते जाएंगे। ओके बट मैं सोचती हूँ कि अब ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम फास्ट, क्योंकि हम तो जमाने के कंप्यूटर के हैं तो हमें चाहिए कोई एक फास्ट टेक्निक है जिससे हम इसको डिलीट कर दें। तो हमने इस पे सर्च किया तो फिर हमने पाया कि जब हम इस जो पूरे राजयोग है, ये पूरा मेडिटेशन है, ये पैटर्न को जब हम एक पिरामिड के अंदर बैठ के और जब ये मेडिटेशन करते हैं तो इट विल वर्क 10 times, समटाइम इट विल वर्क 100 times ऑल्सो। तो जैसे जैसे आप इसमें मेडिटेशन करते हैं पिरामिड में बैठ के, तो ये जो है आपकी सारी बीमारियां हैं जितनी भी है, इंसोमनिया है और जितनी भी कैंसर है, ये सारी चीजों को ये डिलीट करता जाता है, ये सारी चीजों को जो है मिटाता जाता है। तो वैसे तो ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारी बहुमूल्य निधियां हैं, उनमें से एक जो निधि है जो शायद अभी तक 2 दिन में किसी ने हाईलाइट नहीं की है, वो मैं बताना चाहूंगी कि इनके पास बहुत अच्छा जो है पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर जैसे आप जो है मेडिटेशन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको जो है जो पिरामिड मेडिटेशन हॉल है उसमें अगर बैठे करें तो हम मोर कॉस्मिक जो है एनर्जी वो ग्रास्प करेंगे और हम अपने आप को बहुत ज्यादा हील कर पाएंगे। तो दैट इज अ बेसिक थिंग कि हम इन सब चीजों को कैसे यूज करते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले हमारे साथ ये है चैलेंज कि हमें जो है ये राजयोगा करना है और इस राजयोगा को अगर हम मेडिटेशन, थोड़ा मैं पिरामिड के बारे में बताना चाहूंगी। पिरामिड इज अ वर्ड दैट इज अ हम फॉरनर्स जो है इसको यूज करते हैं बट हमारे संस्कृत में जो है प्रिय अमृत नाम से वर्ड है। प्रिय अमृत इस जस को जो बाद में जो है दैट विल बी द पिरामिड हो गया। तो प्रिय अमृत का मतलब कि जो प्रिय है जिसमें प्रेम मिलता है, अमृत मतलब जो अमरता प्रदान करता है। तो हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन है कि आत्मा को जो है दैट इज वी कॉल्ड द प्रिय अमृत। तो हम ये प्रिय अमृत जो है इसका यूज करके हम 10 टाइम्स और 100 टाइम्स जो है हमारे निगेटिव थॉट्स को हील कर सकते हैं। हम इसको जो है यूज करके जो बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं सारे लोगों को एक्सपेक्ट करूंगी और इस पार्क से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बहुत डेटा नहीं है, सिर्फ करपात्री महाराज जी हैं, उनके यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, बट जहाँ मेडिटेशन हॉल है पिरामिड शेप का, वहां पे जो है स्टेटिस्टिकल डेटा के लिए मशीन नहीं है, बट ब्रह्मा कुमारी है वो बोथ द थिंग। तो हम जो है ट्रायल इस चीज का जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक सहयोग भी मांगूंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अनुभूति तो की जा सकती है, तो आप जो है सारे लोग जाएं और इस चीज की अनुभूति करें। धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू डॉक्टर शिखा। आई कॉल अपॉन द स्टेज मिस मनीषा बडेतिया फॉर हर प्रेजेंटेशन। Ms. Manisha, she is a research scholar in Hyderabad. She is going to present on impact of successful collective sense making through subtle capabilities and organization behavior integration. Samay ki limits ko dekhte hue, we will request that please finish in 5 minutes. Thank you.
Om Shanti, very good evening. So the topic that we are going to discuss today is around management research, integration of management research and spirituality. So you see the slide on your screen, and the blue part that you see over there is predominated by management research. Now in the morning session we have heard a term called VUCK, V-U-C-K, from Dr. Raghunath Mashlekar, and he said that the world that we are witnessing today is very volatile, uncertain, complex, ambiguous, which means that it's very prone to crisis. And research has been laid out that in the event of such crisis or such drastic change demands on different organizations, there is a system that comes into play. There is a process that comes into play, and that is called collective sense making. Collective sense making is a concept, is a process derived out of social science, which is slowly laying its way towards organizational science also. So both these sciences, predominantly they study how people behave and interact. So it's more to do with what we see there that is being studied. So in this process, what happens is when any organization is faced by any kind of a crisis situation, then all the relevant stakeholders, be it from technology, be it from marketing, be it from HR in the organizations, they come together and try to find out what's happening here. What is the crisis all about? What should we do here? So that is the term that is called as noticing. They start noticing cues in the situations. They start interpreting what's happening, what is the organization supposed to do? And then they start taking certain actions. And this is called the inaction part. And once they start taking actions, the results that they gain out of those actions, is it helping the organization? The very first thing in crisis is to survive, okay? And then definitely to thrive. So now the research is that the outcome of this collective sense making, there are three outcomes. So the three outcomes that you see on your screen is first, common sense, which is dominated by powerful leaders in the organization, powerful stakeholders in the organization, and the decision is made by their influence, which we know may not be 100% beneficial for the organization at all times. The second outcome that you see of collective sense making is nonsense, which means the influential stakeholders, nuisance is there, but the influential stakeholders, they don't want to they want to reject it and go ahead with the status quo or whatever is there. So this is even more dangerous, very much questions the survival of the organization. And the third thing, the most successful outcome of collective sense making was found to be nuisance.
And when new sense is studied in detail, it is found that employees who are very high on psychological capital are making a lot of difference in this whole process of collective sense making. Now, earlier the competitive advantage for organizations was human capital. You know, kitna competent hai technology mein, kya skill set hai, ye sab bahut bother karta tha aur ye competitive advantage hota tha organizations ke liye. Phir dheere dheere time badla aur competitive advantage ho gaya ki aap, first human capital is what you know. And then the competitive advantage shifted to who you know. And now psychological capital is all about who you are. And the beauty is, the dimensions of psychological capital is hero. Who you are, atma, hero. And hero matlab employees with hope, employees with self-efficacy, employees with resilience, employees with optimism. They are excelling. They are contributing a lot to the organization. Aur Rajyoga meditation, ka agar hum literature padhe management research ke context mein, to wo leadership ke bare mein bahut beautiful cheez bolte hain ki without coercing, you know, employees, they bring out the best from employees, and that is very much relevant to leadership sense giving, where leaders make sense out of the situation and they kind of guide employees. To agar aap dekhen ye jo green part hai pura spiritually dominated hai ekdam. और अगर आप देखें कितना ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन है ये, यू नो, सोशल साइंस, ऑर्गेनाइजेशन साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का. एंड स्पिरिचुअलिटी अगर आप देखें, और जैसे पैनल डिस्कशन में डॉक्टर सुनीता जी ने भी कहा कि रिसर्च, व्हाट इज नॉट सीन दे आर प्लीज बॉदर टू मेजर इट, राइट? सो बट हियर रिसर्च इज कॉलिंग आउट, प्लीज मेजर इट, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो दिस ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन, यू नो, इज फाउंड टू बी giving an outcome of team coordination, which is extremely important for today's organizations, because today's organizations are extremely team oriented. And if we see, research has proven, there's a lot of literature in social science, that employees, what they feel and behave at their workplaces, because they spend most of their time at their workplaces, they reciprocate that, they carry that at their homes, in their families, largely in societies. तो अगर हम इस पे फोकस करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े रेजिलियंट हो जाएंगे. एंड व्हेन साइकैप इज देयर, ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस इज देयर, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द वर्ल्ड. एंड देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज विद दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू मिस मनीषा. नेक्स्ट स्पीकर इज मिसेज रेणुका जाखर. आई इन्वाइट मिसेज रेणुका जाखर ऑन द स्टेज. शी इज अ रिसर्च स्कॉलर in Gurugram. She is going to present on impact of exercises, diet, counseling and Rajyoga meditation in management of binge eating disorder coexisting with polycystic ovarian syndrome, a randomized controlled trial. Request you to please stick on time.
Om Shanti. Polycystic ovarian syndrome is a syndrome in females, and according to WHO, one in five Indian female is suffering from polycystic ovarian syndrome. And 17% to 20% of PCOS females are also having binge eating disorder. Binge eating disorder is a disorder in which a female eats large amount of food in short duration of time without having control over the eating. And even the stomach is distended and full, the patient keeps on eating. This is binge eating disorder. And these patients have weight gain. And even if they try to lose weight, they are not able to lose weight because of their eating patterns. And this situation becomes catastrophic when it is with polycystic ovarian syndrome. So my research was about how Raj Yoga meditation can help these females to manage their polycystic ovarian syndrome symptoms and managing their binge eating disorder symptoms and help in reducing weight at the same time. So what happens in polycystic ovarian syndrome? The first line of treatment is weight loss. And this weight loss is achieved through dietary restrictions and exercises. But these dietary restrictions again lead to craving and overeating after some time. So how to deal with females who are having binge eating already and who are given diet restrictions which will ultimately lead to overeating after short duration of time, and again it will result in increase in weight instead of lose in weight. There were 114 PCOS females also diagnosed with binge eating symptoms, and those were randomized into two groups. One was experimental group and another was control group. Experimental group did exercises, Raj Yoga meditation and diet modifications instead of diet restrictions. And control group only did Raj Yoga meditation and diet modifications. The protocol was for 12 weeks. In experimental group, females did exercises, aerobic exercises and resistance exercises 5 days a week for 60 minutes, and the intensity of exercises was increased gradually. Raj Yoga meditation was, there was a series of pure thoughts for 15 minutes and it was practiced 3 times a day, one early in morning whenever they get up, one in the afternoon, and third time was at the time of sleep. And diet modifications were, without skipping the meal, eating meal at regular intervals 4 to 5 times a day, try to avoid juices, fast foods, etc. and junk foods. If they are not able to cut down completely, they were advised to reduce the frequency. For example, if they consume juice daily, so they were advised at least once in 3 days. So it was not restricted, but it was modified. Then, after 12 weeks, the outcome measures were assessed: weight, BMI, waist circumference, hip circumference, and waist hip ratio. And experimental group and control group, both the groups resulted in improvement. Although experimental group shown more improvement as compared to the control group. Eating pattern was assessed using the questionnaires eat scale and bite scale, and both the groups improved the eating pattern and experimental group improved more. So the study concluded that we use psychotherapy like cognitive behavioral therapy, interpersonal therapy and behavioral modifications. We can use Raj Yoga meditation also to deal with the psychological diseases and the psychological impact of the diseases. How the protocol impacted the patients? One, there was stress related to weight gain in the female patients. The stress was reduced with the help of Raj Yoga meditation. There is a cycle of negative emotions whenever there is a disease in a female's life. So this cycle of negative emotions was reduced and positive affirmations were filled. Then strict diets lead to overeating after some time. But in this protocol we use only diet modifications. There was no strict diet. So it can be used for longer duration of time or throughout the life. Diet modifications are easy to follow rather than dietary restrictions. Also, whenever a person is doing dietary restrictions, there is again negative self-emotion. Why am I diseased, or why can't I enjoy the same things the others are enjoying? So the Raj Yoga meditation and diet modification helps in preventing these negative emotions and negative self-perception throughout the treatment, diagnosis and treatment, and till the result is achieved after the treatment. And exercises helped in reducing weight, also maintaining the weight. The conclusion of the study. Conclusion of the study is, we can deal with polycystic ovarian syndrome and binge eating disease together with the help of Raj Yoga meditation, exercises and diet modifications. And Raj Yoga meditation can be used as a psychological therapy or psychotherapy instead of cognitive behavioral therapy, And Raja Yoga meditation is free of cost available and more spiritual than cognitive behavioral therapy. Thank you.
Thank you, Mrs. Renuka, for highlighting the importance of Raja Yoga meditation. Next, I'll call upon the stage Dr. Kavita Sharma. Dr. Kavita is a professor of chemistry, head Center for Women's Studies, SVV, Indore. She is going to present on a brief review on the importance of breathing techniques with a focus on joyful living.
अभी तक previous researchers से हमने काफी empirical और experimental studies के outcomes सुने. Here, in my presentation, I would be sharing a brief review on the importance of breathing techniques with focus on joyful living. I am sure all of you are very much comfortable with this topic. That's why all of you are sitting in this hall and with this Brahma Kumari's conference on spirituality and science. But this paper emphasizes on the importance and effects of breathing through different traditions and according to different thinkers and peace activists. तो अभी तक हमने जितना भी सारे researchers को सुना और कल से हम जितने भी lectures सुन रहे हैं उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में कुछ reviews share करना चाहूंगी. So all of us know that breath is truly a gift of nature and it is the only thing that stays with you throughout your lifetime. The search for the same is mostly done by people in the external sense, whereas the source lies within. हम सब जानते हैं कि ये हमारे अंदर ही है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं. तो यहाँ पर मैं कुछ importance इसकी share करना चाहूँगी. So according to Giovanni Papini, breathing is the greatest pleasure in life. What Thich Nhat Hanh says, breathe is deeply to bring your mind home to your body. D. Antonetti Foy says, breathe deeply until sweet air extinguishes the burns of fear in your lungs and every breath is a beautiful refusal to become anything less than infinite. Finally, the crux of all thinkers is in Sanskrit proverb, for breathe is life. So if you breathe well, you will live long on earth. Many people have equated the life force or prana to breathe. The reality is that breathe is what stays with a person till the end of life. Pranayama is basically intended to make the breath rhythmic, thereby providing benefits to one's overall health. Rhythmic breathing leads to a stable mind, good health, and thinks forth ananda or joy in the life of the person practicing it. So all of us know that there are so many breathing techniques, pranayams, yoga. All of us used to do this, anulom vilom, nadi shodhan pranayam, chandra bhedi, surya bhedi, ujjayi, kapalbhati, sitli. So many pranayams we do at our home. So practices involving breath are yoga postures also. Yoga is a time-tested modality and the closer our practice is to Patanjali's Yoga Sutras, Kriya Yoga popularized by pranayams. Yogananda is yet another style of breathing based off meditation. I would like to share the different styles of breathing given by different social peace activists. So, have you ever heard about Mahavatar Babaji, who is a deathless saint to Shyam Charan Lahiri, a householder. This method was popularized by him in the West through his self-realization fellowship, and the same was done in India by his organization named Yogoda Satsanga Society. And Paramhansa Yogananda's Autobiography of a Yogi is a wonderful book that explains the essence of Kriya Yoga. If we come to mindful breathing, so mindful breathing has gained a lot of popularity in the West in the last decade. The essence of mindful breathing is vivid from the following quotes of Thich Nhat Hanh, who has made this meditative practice very popular. According to his, breathing is, I calm body and mind. Breathing out, I smile, dwelling in the present moment. I know this is the only moment, says Thich Nhat Hanh, who is a peace activist. To meditate with mindful breathing is to bring body and mind back to the present moment so that you do not miss your appointment with life, which is very much required in today's busy schedule, busy life. Thich Nhat Hanh is also emphasizing on how we can live in the present moment consciousness via mindful breathing. So here I would be sharing some of the, because of the shortage of time, I am skipping my some of the slides. So that I importantly would like to share that one of the Aramaic word, ma, you can experience it. Ma, in-breathe. Ra, out-breathe. Na, in-breathe. Tha, out-breathe. This style of meditation is also known as Christian meditation. And it bears a striking similarity to Buddhist practices based on breathing. Now, due to shortage of time, I am again skipping some slide and directly coming to its effects. Because if we know the effects, definitely we will be following it in our daily practice, and if we will be following it, to zarur humko iske fayde honge, hame sharirik labh prapt hoga, aur ek happy life hum shuru kar sakenge. So, the effects of slow breathing to improve one's life have been studied by Andrea Zakao et al. Slow breathing affects the central nervous system, because जब हमको उसकी importance पता होती है तो करने की ज़्यादा इच्छा जागृत होती है और हम regular practice पे आते हैं. That's why I am sharing the effects of effective breathing. So it affects our central nervous system and the autonomic nervous system. So techniques based on slow breathing reduce anger, depression, and improve the levels of alertness and relaxation, which is very important. So according to Andrea Zaccaro et al., slow breathing modulates the activity of the olfactory bulb that streamlines the whole cortical mental. Mindful breathing can help to reduce negative thought pattern and causes stress. Aaj ki stress bhari zindagi mein, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हाउ वी कैन रिड्यूस इट. सो अमय जी डाला कंट्रोल्स इमोशनल रिस्पॉन्स एंड इमोशंस. दस थ्रू ब्रीदिंग वी विल हैव कंट्रोल ऑन अवर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. ब्रीदिंग एक्टिविटीज एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ वेगस नर्व, about 75% of which are vagus nerves in autonomic nervous system. Our autonomic nervous system is controlled by the brain stem. When we practice mindful breath work, it allows our nervous system to relax and return to a state of calm. The effects of diaphragmatic breathing have been studied by Xiao Ma et al. In China, a sunny and soundproof conference room because so many earlier researchers have showed, and one Bhaiji also explained in the morning session that scientifically their research problem was not proved, but when they discussed, means empirically they discussed with the respondents, they found the results positive. So the study, I would like to give this reference also in the same context, that in China, a sunny and soundproof conference room of an IT company by involving healthy adults in the study. They used breathing monitors to record breathing signals, and the 40 participants were asked to keep their eyes closed and breathe through nose only. For data collection, Likert scale was used for recording the inputs of these participants from a psychological perspective, and salivary cortisol was collected twice, before and after the diaphragmatic breathing, from all participants for neuroendocrine analysis. And the results of this study indicated that cognitive performance improved and stress levels were reduced owing to diaphragmatic breathing. Now, coming to the conclusion, the importance of breathing and lifestyle practices or meditative practices based on breathing have been discussed in this presentation, and the effects of the same on the health and overall quality of life of one who practices them has been emphasized. At the end, I would like to say that systematic breathing practices may help keep one's spirits high and may also lead to a better state of body, mind and spirit. This in turn will improve the working efficiency on an individual, and the person may feel satisfied, happy and harmonized. So for the joyful life, you all are requested to breathe proper and use some of the breathing techniques which I have shared, which you like, either Kriya Yoga, either with Patanjali or with the sisters or other researchers have shared here. But please do start breathing exercises at your home from tomorrow morning, and live a joyful life. Thank you very much.
Thank you, Dr. Kavita Sharma, for highlighting the importance of breathing and connecting it with the nervous system and the peace of mind. So next I'll call upon the stage Dr. Mukesh Shah. Dr. Mukesh Shah is an MD. He is a dermatologist and practices in Kalyan, Mumbai. He's going to present on yeast, which is Saccharomyces cerevisiae.
I am the last presenter. I know it's getting late. I will try to make it short and sweet. The research paper which I am going to speak on is study effect of Sakash meditation on fungal yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. The authors are our local Brahma Kumari's head, Brahma Kumari Alka Didi, who is also the zonal in charge of Spark Maharashtra, Dr. Kantilal Nagre, and Dr. Dinesh Vanule from the Department of Zoology, Birla College of Science, Commerce and Arts, Kalyan. Dr. Rinkesh Kurkure, he is an engineer and material sciences, he is the master. And myself, Dr. Mukesh Shah, as Didine Bola, I am a practicing dermatologist, MD skin. All of us, we know here what the word meditation means. It is derived from the Latin word meditatum, which means to ponder. It's an ancient tool used to relax mind and reach towards a state of self-consciousness, which is different from the state which is in a dreamy state or when we are doing our routine work. Now, it is achieved either by concentrating on one fixed object or light or sound or some breathing. I will not go into the details of the types of meditation, as it has been already discussed. I would like to say why we choose this fungus, Saccharomyces cerevisiae. It's a single-celled eukaryotic fungus. And if you see the medical literature, medical research, last 50 years across the globe, this fungus was used, especially in genetic research also. So that is the reason we choose this fungus or yeast. और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो ये फंगस हमको कहाँ पे जरूरत है, बेकरी में जहाँ पे ब्रेड बनाना है, फर्मेंट करना है, केक बनाना है, या इवन वाइन इंडस्ट्री में दिस फंगस इज यूज्ड, जस्ट फॉर द योर नॉलेज. अवर फोकस वाज ऑन सकाश मेडिटेशन. सकाश मेडिटेशन इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन विच इज प्रैक्टिस्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी. हियर व्हाट हैपेंस इज द प्रैक्टिशनर सिट्स इन अ वन आइडियल प्लेस एंड कंसिडर्स हिमसेल्फ as a separate soul which is different from the body, and then the guided journey begins and he or she tries to connect with an immortal, shapeless, large soul, that is soul of God, or what we call it as Paramatma. And when the soul tries to meet this Paramatma, it is considered as a source of energy and the soul gets energized, like how we charge our mobiles. And now this energized soul, the reverse journey starts and it enters again the one's physical body. Now this energy is then disseminated into the meditators, all the cells, organs and body. But not only in his body, what we have found that it also goes into the surrounding and does the well-being of the surrounding. So we started this study with the object what this Sakas meditation would do on this yeast cell Saccharomyces cerevisiae and whether it is a focused meditation or non-focused. So activated baker's yeast, it comes in a powder we bought from the local store, and 1 gram of yeast sample was transferred into 100 ml of YPD media. This sample was then allowed to diffuse at the room temperature. And then it was incubated, it was kept in an incubator at 121 degree centigrade for 20 minutes. And then the yeast cell count was measured. The Nubor chamber was used. And how we do the smear study in medical to count the WBCs, the same formula was used to count the yeast cells. 10 ml of this yeast culture was used for the entire study. This was transferred into 9 equal test tubes and 3 sets were made, 3, 3, 3, set 1, set 2 and set 3. These all were, the test tubes were kept at room temperature. And then in the experimental group, the Sakash meditation was done. The other physical parameters like noise level, humidity of the room and temperature were also measured with respective technologies. These three groups, one experimental group was kept in our local Brahma Kumari Center Kalyan in the meditation room. The other set of three test tubes were kept in an adjacent room where the meditation was not to be performed. And another three test tubes were kept in that Birla College where the authors are also from the Birla College, which is approximately 1.5 kilometer away from our center. And then the study was started. In the experimental group, continuous 2 hours of Sakash meditation was done. It was a focused meditation, which was focused on these three test tubes and the well-being of the, or focus on these yeast cells. Now if you see, I will try to make it simpler. If you see the mean reading of all these 9 test tubes in the beginning, so it is 330, and if you apply that formula, the baseline count was say 17,500. Yeast cells I am talking about. Now the control group, which was kept 1.5 kilometer away from the study, the yeast cells count decreased significantly. You can say from 17,500 it came to 10,500. Another control room, which was just adjacent to our meditation room, there also the yeast cells, the colonies reduced, but not as in that 1.5 kilometer away, but again it reduced. And to our surprise, where we did this 2 hours of continuous Sakash meditation, the yeast cells counts increased almost by 25 to 30%. 17,500 count of baseline reached to 22,500. This I already talked about. If you see the temperature in all three groups was around 28.2 to 28.3. The humidity in the air was also 86 and 87%. And the average noise level was also 48 to 50 decibels. So these three had no effect on our study. Now again, if you see under the microscope, the one shows the baseline, two and three shows the control group one, which was adjacent, and one was 1.5 kilometer away. You can see even three, you can make out from our eyes also that the east colonies have reduced. Whereas if you focus on the image four, which is where the Sakash meditation was done, and you can actually see that the east cells have increased. I again try to explain in a bar diagram. The baseline, you can see above 15,000, that is 17,000. 1.5 kilometers dropped down to almost 10,000. Adjacent room around 12,000. And the meditation room, it increased to 22,500. So this Sakash guided meditation practice in room with a focus on east cell, where showed increase in the cell count, whereas east cell count in control group did not show increase, in fact they decreased. The physical parameters are already included. So the experimental group showed increased number of east cells because of focused Sakash meditation. Now we actually, this may be because the Sakash meditation intentionally performed only by focusing on the well-being of experimental group and not on the surrounding group. Now we don't know the exact underlying mechanism to actually what happened. Because if you keep yeast cells in a test tube for a certain amount of time, they go on reducing. Now what exactly happened here and how the yeast cells increased? We found one paper where it talks about gut-brain axis is modified and gut-to-brain talk is modified by this meditation, and it has an effect on central nervous system and autonomic nervous system. But even they also concluded that data is inadequate to understand this effect of meditation on the gut microbial flora. So we hereby conclude that Sakash meditation can affect the count of yeast cells, Saccharomyces cerevisiae, on exposure of 2 hours. The effect was found only on focused organism and not on the control group. So it was a focused meditation. And the underlying mechanism behind the increasing number of yeast cells is not well understood. So we propose that multicenter study or similar more studies should be conducted in future. These are our references. And I would like to especially thank the organizing committee of Spirituality in Researchers 2023, entire team. Dr. Naresh Chandra, the head of Birla College, and our Brahma Kumari's local center, Prabhu Milan Bhavan, and all of you for patient listening. Thank you.
Thank you, Dr. Mukesha. So we are going to publish the proceedings of this session. So we request all of you to submit your full papers so that we can publish in the proceedings. And if you have any queries, we can always talk about it. There is a meeting from 2 to 3 p.m. tomorrow in training hall number 1. You all are invited there to discuss a few plans related to research.